संडे के भी कर्मों की कोई गति
तो आप बच्चों की विचित्र लीलाएं देख रहे हैं। एक पांच मिनट में लीलाएं विचित्र है, हर्षाने वाली है, वंडरफुल है, वैरायटी है। ये लीलाएं देखकर बाप अपने दो स्वरूप प्रकट करते हैं। सबसे पहला स्वरूप रहम दिल, रहम दिल बनकर रियायत देते हैं, एक दो तीन चार बार माफ करते हैं। और दूसरा न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस, तो न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस के रूप में एक नियम बना के रखा है और वो नियम अविनाशी नियम है। एक किनार लाख, एक का लाख गुना प्राप्ति
है
और पश्चाताप या भोगना, तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक मशीनरी चलती रहती है। तो उसमें बाबा ने चार प्रकार के बच्चे देखे थे। सबसे पहले बच्चे वो जो बाप को जान लिया, पा लिया, पहचान लिया, ब्राह्मण कुल के अंदर ब्राह्मण कहलाने लगे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का टाइटल जिनको मिल गया, राजयोगी कहलाने लगे, ईश्वरीय सेवा के जो निमित्त बन गए, ईश्वरीय प्राप्तियां जिनको हो गई, ईश्वरीय प्राप्तियों का ईश्वरीय नशा है और ईश्वरीय कुमारी है और सभी प्रारब्ध की सारी निशानियां दिख रही है। ये सारी आठ बातें होने के बाद भी माया से सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकते, माया को पहचान नहीं सकते, माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये सब होने के बाद ये फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे, ये सब होते हुए भी बीचे बन गए राजयोगी, सेवा के निमित्त ईश्वरीय नशा प्रारब्ध पालिया, बाप को जान लिया, पा लिया, पहचान लिया, वो सब होते हुए भी माया को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकते, माया को बलवान देख, इसके लिए वो इस पथ पर चलते हुए रुक जाते हैं, रुक कर थक जाते हैं। कभी कभी हार तो कभी जीत, तो कभी खुशी कभी गम, ऐसे होता है। इसके लिए कभी रुकते हैं और थक जाते हैं। इसके लिए किसी बाप अपने आप को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं रहती, बाप का डायरेक्ट साथ और सहयोग अनुभव करने की नहीं कर पाते, इसीलिए किसी और को पंडा बना लेते, किसी और को सहारा बना लेते, साथ और सहयोग प्राप्त कराते, तिनके का सहारा लेते, तो तिनका हिलते रहता है, गिरते रहता है। तो ये थे पहले प्रकार के बच्चे। दूसरे प्रकार के वो बच्चे थे जो किसी साल्वेशन को लाठी बना लेते, आधार बना लेते, ये होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ये होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। परिवर्तनशील आधार, विनाशी और परिवर्तनशील को अपना आधार बना देते, अविनाशी बाप को छोड़, विनाशी और परिवर्तनशील को आधार बना देते। और इसके लिए उनको दो बातें होती है, उनकी अवस्था एक रस नहीं रह पाती है, अवस्था एक रस नहीं रह पाती है, और बार बार जो ईश्वरीय प्राप्तियों का जो ईश्वरीय प्राप्ति हो विनाशी समय के लिए होती है, उनको लंबे समय के लिए नहीं हो पाते। ये सेकंड प्रकार के बच्चे थे। और तीसरे प्रकार के बच्चे थे जो उमंग उल्लास हिम्मत में पाप को जान लिया, पा लिया, पहचान लिया, मंजिल तक पहुंच भी गए, पर त्रेसठ जन्म के हिसाब किताब को समझ नहीं पाते और घबरा जाते देखकर,
घबराओ नहीं,
दूसरों से स्वभाव संस्कार जब निकलते हैं बाहर तो घबरा जाते। ये तीसरे प्रकार के बच्चे जो सब उन तीनों से आगे दोनों से। और लास्ट वाले बच्चे थे कोटों में, तो वो कौन से, तूफान को भी तोहफा समझते हैं, स्वभाव संस्कार की टक्कर को भी आगे बढ़ने का साधन समझते हैं।
पिछले संडे का, अगले संडे तो आएगा
उनके हिसाब से हमारी एक बहन है ना, शिव बाबा आती है, शिव बाबा जाती है क्या कर रहा बहुत उड़ीसा की समझा के हो गया, पर शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है ठीक। तो तीसरे पर चौथे प्रकार के कोटों में कोई है जो तूफान को तोहफा समझते, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ाने का साधन समझते, जिन्होंने बाप को जान लिया, जो साक्षी वो हर परिस्थिति में हर्षित रहते हैं। ऐसे कोटों में कोई बच्चे, ये सब बच्चों की लीलाएं बाप देखते हैं नास्तियों से। फिर आगे बोला था वो सत्य की नाव जो होती है वो लेगी डूलेगी पर डूबेगी। बाप का बनना अर्थात मैतम मचाना, बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं लेना। एक ही जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए, वो कौन सी?
बाप को याद
करना। जैसे वो चलाएंगे वैसे चलेंगे, जिस स्थिति के आसन पर वो रखेंगे वहाँ बैठेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, एक ही जिम्मेवारी। और कोई जिम्मेवारी?
किसने कहा तुमको भगवान का?
मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा कहाँ से आ गया? आज भी बोला वो पर मिलता है ये बात बोल रहा है। और तो दीदी से बात किया था उसने, वही चीज थी वापस रिपीट, जो जिम्मेदारी दे दो बाबा। वो कार्टून वाला इसमें था कि उसके पहले? नहीं पढ़ा तो नहीं मैंने,
प्रैक्टिकल किया ना इसलिए सब गया मेरा।
वो पढ़ने का टाइम ही नहीं, ये इतना बड़ा है और हफ्ते भर का इतना माल है, माल इतना है कि अगर ये आज छूट गया तो गया, छूट गया हमेशा के लिए। मैं यही सोचता हूँ कि आज अगर मैंने आज की मूवी अगर छोड़ दी तो वापस उसको पढ़ने का कोई चांस नहीं है।
तो आप मूवी यहाँ सुनते हैं वहीं पढ़ लेते हैं?
मैं पढ़ता भी हूँ सुनता भी हूँ।
यहाँ सुनते हैं
ये तो बात है,
उसके बाद एक हफ्ते की मूवी, ये तो मुझे दस घंटे की। उसमें फिर दीदी से बात की थी बाबा ने, स्थिति के बारे में बोला, नहीं मतलब बाबा को सब दे दो, मेरा कहाँ से आया, मेरा संस्कार सब कुछ दे दिया बाबा को, उसके बाद में वापस नहीं लेना। वही चीज वहाँ पर रिपीट होती दीदी से बात करते करते। फिर उसके बाद में एक हफ्ते का
तुम्हारा मगज खुशी से भरा,
तुम्हारा मगज 16 तारीख, तुम्हारा मगज भरपूर ज्ञान से भरपूर। एक्चुअली वो प्रश्न उत्तर जो है ना और धारणा उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मुरली में बाबा ने बोला है तुम्हारा मगज खुशी से भरपूर हो, ज्ञान से भरपूर हो कि तुम्हें सदैव खुशी रहे, ज्ञान टपकता रहे बुद्धि में रहे।
सार में अलग है
वो जो है ना बनाया हुआ है। मैं बहुत बार ना माँ बाप के प्रश्न उत्तर अधारना छोड़ देता हूँ पढ़ने का, पता नहीं मुझे, मैं केवल बीच का ही पढ़ता हूँ बस। वो वैसे की वैसे यथार्थ बाबा के वाक्य
और
है कुछ
इनके पास नहीं।
अच्छा अरे
हमारे पास भी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी उसमें जो है ना कहीं किसी ने गलती की होगी तो बाबा कम्बा मूर्ख खूब
बोलते हैं। हाँ बाबा बोला अभी अच्छा नहीं लगता है ना उस समय, क्या सेंटरों पर अच्छा नहीं लगता है, नए नए बड़े बड़े लोग आते हैं
पहले तो थोड़ा सा, और बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उनको डांटना भी प्यार ही लगता।
वो मैंने मुरली सेंटर से चोरी की, एक अलमारी थी बंद थी और ट्रांस लाइट के पीछे, तो बहनों ने कहा कि सफाई करनी है तो ट्रांस लाइट को निकालना है, निकाला पीछे खिड़की निकली, बहनों को पता नहीं था ट्रांसफर होती रहती ना, उनको पता नहीं गुलिया वो लंबी लंबी वो टाइप वो टक टक मारता है ना ऐसे करके वो टाइप का, वो पड़ी तो बड़ा मजा आया। मैंने कही तो मैंने कुछ लग रख
ले वैराग की भी बहुत बातें होगी। अभी कम है सुनने में, बहुत है ना जरूरी सब बैराग के लिए नहीं सुनते
हैं,
हर एक का अपना अपना कारण है मुरली सुनने का।
एक बार रत्नमयी दादी ने यहाँ बोला था हम लोगों के बीच, तो कुछ बातें निकाल रही हैं क्योंकि करते नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे,
नहीं कर पाएंगे, पावर इतनी नहीं है ना, पावर भी तो आगे देखनी चाहिए ना। कोई कोई तो सुन के चले जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर बस फिर से हफ्ते में एक बार आते सेंटरों पर। यहाँ वाला तो ठीक है, सेंटरों की बात है तो मुश्किल से आते हैं, वो भी नहीं आएंगे
मुरली सुन के कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो
सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, अगर सत्य स्थान के निवासी बन, असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के वंडरफुल रूप का साक्षात्कार यही होगा। संडे उसी का उसी का नीति का वाक्य पछताएंगे मन खाता रहेगा सत्य स्थान के निवासी बन सत्य बाप का सत्य बच्चे बन अगर असत्य कर्म किए तो प्रत्यक्ष दंड का वंडरफुल रूप के साक्षात्कार नहीं होगा। धर्मराजपुरी में तो होंगे उसके पास यहाँ पे भी होंगे दाग मिट नहीं सकेगा दाग स्पष्ट दिखेगा छिप नहीं सकेगा वही संडे की है।
ये सकार में भी था कि स्थूल शरीर में ही आपको सजा मिलेगी
अभी परसों स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर की बात नहीं स्थूल शरीर में सजाएं खानी पड़ेगी सजा दिलाएंगे बात
महल है उधर है
बोला हाँ याद को सहज बनाने के लिए तीन रूप से याद करने के लिए
हाँ, वो बाप
एक मुरली जो थी ये हफ्ते की उसमें पूरे बाबा के नाम ही है उसमें अलग अलग केवल नाम लिबरेटर है बाप टीचर सब गुरु पतियों का पति गुरुओं का गुरु वो जो है ना उसमें खाली नाम है वो पूरा मुरली का दूसरा कुछ है नहीं खाली अलग 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 नाम दिए बाप है बुद्धिमानों की और
16 तारीख और बाबा तुम्हारे गले में ज्ञान की कंठी
है तुम्हारे गले में ज्ञान की कंठी है फिर एक मुरली थी वैर और भय के ऊपर
तुम्हें निर्भय बनने के लिए ऐसे
किसी का भी वैर नहीं होना चाहिए
शब्द हाँ वो वही वाली बात उसी में
कंठी वाली नहीं है ना ये कंठी वाली मुरली है
कंठी वाली दो दिन पहले थी ये
दूसरी
अभी की है ना
नहीं वैर वाला
वैर वाला अभी की है ना कल परसों
वैर वाला
चलो पहले भी रहेंगे
उसमें
चले गोली लग जाए छत गिरे हम तो चले बाबा के पास निर्भय बाप भी निर्भय है तो तुमको भी निर्भय बनना है शायद कहीं छत गिरा हो नहीं ये मुरली जब चली तब की बात
होगी
ये जो कहानी है ना ये उसके आती है साईं बाबा के इसमें आती है साईं बाबा बैठे हैं उसकी द्वारका में सब लोग खाना खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं अचानक से छत गिरता है तो आधे लोग उठ के भागते बाहर तीन चार ही लोग बैठे रहते क्योंकि उनको विश्वास है कि ये साईं बाबा बैठा है तो कैसे गिर सकता है छत तीन चार ही लोग बैठते खाली वो नहीं हटते वहां से और वो आधे लोग बाहर चले जाते आधे लोग बाहर चले जाते और उसके बाद में वो जैसे गिरने लगता है वो बोलता है ए रुक जा छत को बोलता है तो रुक जाता है वहीं और फिर आराम से खाना खाते वो और तीन चार लोग और फिर बाहर निकलते और बोलते आप गिरना है तो गिर धड़ से छत गिरता है फिर बाकी सारे लोग माफ कर दो निश्चय की परीक्षा थी ना वहाँ
पर
वो सत्य साई बाबा के भक्त वो दूसरा हाँ ये सत्य साई बाबा के भक्त वो तो नियम भी है वो जिसका जिसमें फेथ होगा ना चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो पत्थर ही क्यों ना वो पत्थर ही उसकी रक्षा करे जरूरी नहीं है कि भगवान वहाँ पे इंटरफियर करके उसकी रक्षा करे जिसका जिसमें विश्वास है इसको विश्वास का नियम कहा जाता है जिसका जिसमें विश्वास है 100 डॉक्टर के पास गया किसी से ठीक नहीं हुआ गांव में जाए झाड़ फूक करने वाला उससे ठीक हो गया क्योंकि उसका विश्वास उसमें था ये डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं था ये नियम ही है विश्वास का नियम लॉ ऑफ फेथ। जीसस क्राइस्ट के पास एक अंधा व्यक्ति आता है जीसस क्राइस्ट उसको बोलता है ठीक है तुझे विश्वास है कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा तो बोलता बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है कि यू कैन क्योर मी तो मिट्टी लेता है थूकता है उसके ऊपर उसकी आंखों को लगा देता है बोलते जाकर पानी में मुंह धो के आ मुंह धो के आता है उसको दिखने लगता है किसने ठीक किया उसको उसके विश्वास ने उसको ठीक किया जिसका जिसमें विश्वास ये जागरूक देवता होते हैं बच्चा ये हो जाता है नहीं होता है वहां जाते मन्नत मांगते बच्चा मिल जाता है कौन मिलाता है बच्चा विश्वास ये विश्वास की बात है ये तो भक्ति में यही तो भक्ति इसलिए तो चली इतना समय जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति आती न देख रही तैसी जिसको जिसकी जिसमें भावना है उसको वहीं को प्रभु दिखता है और उसी से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो विश्वास की बात है जो बताया जरूरी नहीं है कि वो साईं बाबा नहीं उसको क्योंकि उसमें विश्वास है साईं बाबा में
इसलिए हो गया
जरूरी नहीं है कि वो भगवान है भगवान नहीं है पर उनका विश्वास है कि वही भगवान है, जिसके लिए उनको वो भगवान ही दिखता है, और वैसे भगवान से जो जो मिलता है वो उससे मिलता है। और क्या बोला था ये हफ्ते में, निर्भय बनना है,
निर्भय
तुम्हारा वैध नहीं होना, निर्भय बनने के लिए क्या करे बताओ संजय भाई, निर्भय बनने के लिए क्या क्या किया जाए? किसी को भय है, हमने एक बार लिस्ट निकाली हमारे ग्रुप में, तो किसने कौन से कॉकरोच, डार्क प्राणी, भालू, ये सब सब लोगों के ज्यादा जो है ना भय यही थे, प्राणियों के भय। किसी को पानी, अंधकार, अंधकार में अंधेरे में सो नहीं सकते कितने लोग, बीचे पक्के जो है ना वो अंधेरे से डर लगता है। हाँ कितने मैंने देखा, एक बहन थी हमारे साथ, वो तो इतना मतलब मेरे पहचान की और बहुत पक्की है ज्ञान में, पर वो अंधेरे से उसको मतलब घर में अकेली अगर रहे तो वो उसको लगता है कुछ कुछ आएगा कोई कहाँ से, पूर्ण विश्वास, संपूर्ण बाबा पर पूरा विश्वास है, पर अंधेरा हुआ कि खत्म। महात्मा गांधी की लाइफ स्टोरी अगर पढ़ो ना, तो वो जब बच्चा रहता है उसकी शादी हो जाती है, उससे वो थोड़ी बड़ी रहती है, बाल विवाह होता है ना, तो उसको जब भी अंधेरे से इतना डर लगता है कि उसको मम्मी चाहिए रहती है हमेशा अपनी, नहीं तो उसको लगता है कि इधर से सांप आ रहा है, इधर से भूत आ रहा है, ये सब लगता है। और जब उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी उसके सामने बोलती है मैं एक हाथ में सांप पकड़ सकती हूँ, एक हाथ में ये पकड़ सकती हूँ, इतनी निर्भय रहती है वो, तो उसको एकदम लज्जा आती है। बोलता है ये मेरी पत्नी मेरे से, वो बताता नहीं उसको, पर मुझे ये सब चीजों से डर है। उसको कोई चीज से डर नहीं रहता, और इसको हर चीज से डर रहता है, बचपन से अंधेरे से हर चीज से डर रहता है। तो वो बताता है अपने अनुभव में लिखा है उन्होंने, मुझे शर्म आ गई फिर इसको सुन के, इसको कोई डर ही नहीं है। तो डर जो है ना, जिसका एक दूसरा कारण है डर का, जिसका जिससे मृत्यु हुई है उसका उससे डर रहता है।
जो
पानी में डूब के कोई मरा है उसको बचपन से पानी से डर, जो ऊपर से गिरा है बहुत ऊंचाई से उसको हाइट से डर होता है। हाँ वही मतलब ये एक कारण है, एक कारण ये भी
है, सांप काट के मर गया है उसका सांप से डर होता
है, हर एक चीज का डर होता है। सांप वो मैंने कहानी बताई थी ना आपको, सांप वाली, ये किसी को मृत्यु दंड की सजा हो गई, ठीक है, उसको दिखाया गया उसको कैसे मारेंगे, उसको दिखाया गया दूसरे कमरे में एक बहुत जहरीला सांप, एक घोड़ा खड़ा है और बहुत जहरीला सांप को छोड़ दिया, और उस सांप ने जैसे काटा घोड़े को एक सेकंड में घोड़े की मृत्यु हो गई, और इसको बताया गया यही सांप अभी कल सुबह तुम्हारे कमरे में छोड़ेंगे और तुमको मारेंगे,
क्योंकि
नहीं नहीं जहरीला था, फुल जहरीला,
क्या
छोड़ी है, ये रात भर इतना भयभीत रहता है एकदम शॉक, और दूसरे दिन उसको दिखाते हैं उसके कमरे में सांप आ रहा है, और सांप को वही सांप उसके कमरे में छोड़ा जाता है, वो आता है उसके पास, वो इधर देखता है ऐसे पूरा, और खट से सांप काटता है और वो मर जाता है। मरने के बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में वेनम बोलते हैं, स्नेक वेनम मतलब सांप का जहर, तो उसमें जहर निकलता है, पर उसको सांप ने काटा ही नहीं,
सांप ने नहीं काटा,
सुई पेन रहता है ना नीट दो चुबा दिए, सांप आया उसके कमरे में और सुई चुबा दी, उस डर ने उसको मार दिया,
डर से ज्यादा,
और वो डर इतना मारा कि उसके खून में से भी जहर निकला। ये साइंस के साइंस जो है ना, विज्ञान इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेडिकल साइंस ये हमारे बुद्धि के ऊपर की बात है, साइंस हाथ खड़े कर देता है यहाँ पर, ये कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करें इसको, कोई भी किताब में नहीं लिखा हुआ, हो ही नहीं सकता, कैसे बताएं इसको, ये तो ऊपर की बात है, ऊपरी हवा। तो ये भय है, तो इस तरह का होता है, तो भय एक ऐसी चीज है ना, अगर भय को जीतना है, बाबा ने तो एक बता दिया कि ईश्वर ये सहारा कि बाप मेरे साथ है, सर्वशक्ति दूसरा है अशर जी वाला, और तीसरा एक बहुत अच्छी स्टोरी है उसमें अशर जी मतलब आत्मा जो जवाब ने बोला, दूसरा एक व्यक्ति है कि वो ना बहुत दारू पीता है, और जब दारू पीता है तो उसको सब जगह सांप दिखने लगते हैं, सांप ही सांप, तो वो क्या करता है एक पिंजरा लेता है और पिंजरे में मुंगूस रखता है, नेवला क्यों रखता है, क्योंकि वो जब सांप दिखेंगे ना तो वो नेवला उनको खाएगा मार देगा, तो वो अपने उसको बताता है, उसका दोस्त उसको बोलता है, अरे ये जो नेवला तुम क्यों रख रहे हो, वो जो सांप तुमको दिखते हैं ना वो सही में थोड़ी ना है, वो झूठे हैं। तो बोलते है, तुमको किसने बताया नेवला सही है, ये भी नकली है। एक भय को मारने के लिए एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन उसको खत्म करने के लिए दूसरे इमेजिनेशन को क्रिएट किया गया, एक भय को खत्म करने के लिए दूसरा एक क्रिएट किया उसने, ये उसकी मेथड थी। तो जिसको जिससे भय है उसको खत्म करने के लिए इसी तरह का एक दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो खत्म होगा वो भय। ये भी एक मेथड है फियर को खत्म करने, या फिर दूसरी ऐसी मेथड है कि जिसको जिससे डर है वो इमेजिन करे, जैसे किसी को भाषण देने से डर लगता है बहुत, हजार लोग हैं बोल दिया तुम भाषण करो उसके सामने, तो वो उसको इमेजिन करेगी, बुद्धि में इमेजिन करेगी मैं भाषण दे रहा हूँ, या जिस चीज से डर है वो कर रहा है, किसी को साइकिल चलाने से डर है, साइकिल कभी चला ही नहीं है, तो इमेजिन करेगी मैं चला रहा हूँ, पहले ही वो सिचुएशन को मेंटल माइंड में क्रिएट करेगी, तो वो होगा। हाँ पहले से उसको सोच के रखो ऐसे से तो भय नहीं रहे, क्योंकि हमको इमेजिनेशन एक वो भय क्या है, भय सत्य थोड़ी है, वो काल्पनिक ही एक प्रकार से, उसको उसको हराने के लिए दूसरी कल्पना का निर्माण करना पड़ेगा जैसे इसने किया था। और क्या था?
और था कि अभी रक्त घी की नदियां
घासलेट
की
नदी,
वहाँ घी की नदी में
बनो।
हाँ
तुम उत्सव मनाते हो रोज,
जंगल
कौन सा उत्सव मनाते हैं?
देवी राज्य
स्वर्ग की स्थापना करने का उत्सव मनाते हो, कांटों को फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो, रोज उत्सव मनाते हो। महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम, वो लिखता है विठोबाचे राज्य आमा नित्य दीपावली, माना विठो विठोबा मतलब कृष्ण को बोलता है, भक्त का अपनी भावना है कि इसके राज्य में हमारी नित्य दीपावली रोज है, दुनिया वालों की एक दिन होती है हमारी रोज है, क्योंकि हम उसके राज्य में हैं, वो भावना है भक्ति की। तो बाबा बोलते तुम भी रोज उत्सव मनाते हो स्वर्ग में चलने का, कांटों से फूल बनाते हो। और अच्छी पत्ती लाने की, और सारे वरदान जो है ना एक बैलेंस के ऊपर है, एक हिम्मत के ऊपर है, एक इमोग उत्साह के ऊपर, एक समर्पण भाव के ऊपर है, एक परखने और निर्णय करने की शक्ति के ऊपर। हाँ जिस प्रकार की परिस्थिति हो और स्वभाव संस्कार का जिस मूड का आगे का व्यक्ति हो उसको उसी प्रकार से परख के उसी प्रकार से वहाँ पे मतलब निर्णय करना है तो सफलता मूर्त बनेगी,
एडजस्टमेंट होना, किसी भी
सफलता मूर्त वरदान था उसने ये दो बातें। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा ने बोला ज्यादा सोचो नहीं,
सोचने की जरूरत नहीं है, एक
बाबा को याद करते रहेंगे तो आपे ही
जाएगी,
आपे ही मतलब बुद्धि अगर क्लियर होगी याद करते रहेंगे तो आपे ही परखने की शक्ति आ जाएंगी और निर्णय कर पाएंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे। परखने की शक्ति निर्णय करने की शक्ति तब आएगी जब बुद्धि क्लियर हो, तो ऑटोमेटिक सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये था एक वरदान। दूसरा एक था समर्पण भाव के ऊपर वरदान था, गृहस्थ व्यवहार में रहते जो समर्पित भाव से रहते हैं उनका सहयोग सेवा के वृक्ष को फलीभूत करता है, उनका सहयोग ही इस वृक्ष के लिए पानी है, वही बाप के दिल तख्त नशीन है, वही सेवा के धुन में रहते हैं। ये समर्पित भाव के ऊपर दया भाव, वो उसके पहले लाख सत्य की मुद्दा में, अगर दया भाव है तो ब्राह्मण परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, अगर दया भाव को इमर्ज करेंगे तो किसी भी आत्मा के कड़े से कड़े जन्म जन्म के संस्कार तुम एक सेकंड में समाप्त कर सकते हो,
उसके लिए श्रेष्ठ अनादि संस्कार,
श्रेष्ठ अनादि संस्कारों को इमर्ज कर गुण धारण करने अभी कल का सुन के याद आया 100% अपने आप को गुणवान बनना है, यही पे बनना है, देवता बनने के बाद नहीं,
यही
यही बनना है, मुक्ति भी, जीवन मुक्ति भी दो है,
वो भी इधर
एक संगम युग की जीवन मुक्ति, एक सत्युग की जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्त तो अभी बनना है,
मैं तो इसका है अभी।
वो तो है, अभी भी बनना है, ये दूसरी जीवन मुक्ति। फिर एक वरदान बैलेंस के ऊपर था, बाबा ने बोला था बैलेंस रखो तो क्या हो जाएगा सुशील भाई। वो तो हमेशा क्या है बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिलती, तो नंबर वन सहज बन जाएंगे, औरों को साक्षात्कार करा सकेंगे, स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। ये बैलेंस की मतलब एक वरदान था बैलेंस के ऊपर। सेवाधारी कौन सा तपस्या के आसन पर बैठने वाले?
हाँ हाँ हाँ।
एक बहुत पुराना ऐसा ही एक स्लोगन था, जो अपनी जिम्मेवारी का जिम्मेवारी को निभाते हुए डबल राइट रहते हैं वो बाप के समीप रहता है। बहुत पहले एक स्लोगन आया था, ये बहुत अच्छा लगा था। जिम्मेवारी संभालते हुए स्वयं को जो डबल राइट रखते है वो बाप के समीप रहता है।
बाप स्मी वाले तो परसों का था, बाप के
स्मी प्रतन बन गए। कौन
हम?
जो उमंग उत्साह में रहते हैं, उमंग उत्साह का पॉइंट हो, जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो बाप के समीप रतन बनते हैं, विजयी बनते हैं और विघ्न को समाप्त करते हैं, विघ्न विनाशक बनते हैं। तीन पॉइंट
उमंग उत्साह द्वारा सब विघ्न को,
वो ऊपर का जो है ना वो याद नहीं रखो,
बीच वाला पढ़ रहे।
केवल याद क्या रखना है, जो बीच का जो वरदान का जो एक्सप्लेनेशन है उसको याद रखना है। ऊपर का याद रखने जाएंगे तो एक दिन याद रहेगा, दो दिन बाद में भूल जाएगा वो, क्योंकि वो बनाया हुआ है ना। ऐसा कोई भावना नहीं, कोई उस तरह का वरदान तो दिया नहीं,
मुरली
खाली बीच का, बीच का जो है ना उतना ही पढ़ना है बस। ऊपर का मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, ये होके ये वर्ग भव वो सब जोड़ के रहता है ना, वो कहाँ याद रहता है। याद करके भी वो उसका क्या फायदा, समीप रतन भव वही है। तो जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो बाप के समीप रतन का अनुभव स्वयं अनुभव करते हैं, विघ्नों भी समाप्त करते हैं, विजयी भी वो बनते हैं। तीनों चीजें और एक बैलेंस, एक हिम्मत के ऊपर एक वरदान था, हिम्मत के ऊपर था ना एक, माया हिम्मतहीन बन जाती है उनके सामने, वो हिम्मतवान के सामने माया हिम्मतहीन बन जाती है। याद नहीं,
हिम्मत के तीन चार वर्ड लिए
करने पर भी माया हिम्मतहीन,
हाँ दृढ़ता का संकल्प करने पर भी माया हिम्मतहीन बन जाती है। हिम्मत, उमंग, उत्साह, बैलेंस, समर्पण भाव, परखने की स्नेह की शक्ति, तपस्या के ऊपर एक स्लोगन था ये अभी था, अंगद समान एक रस अचल अड़ल रहेंगे तो माया दुश्मन तुमको हिला नहीं
सकती।
वो दूसरा तपस्या का लगा, तपस्या के जैसे वो आसन पर बैठते तुम एक रस किसी के आसन पर बैठो। और याद 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 करो, समर्पित
याद का अभ्यास सहज करने के लिए बाप टीचर सब
तीनों
ये भी जिक्र हो गया
निरंतर
अलग अलग तरीके से आप
इस पर एक अभ्यास सकता हूँ यही अभ्यास।
फिर बाबा ने कहा तुम ये नहीं समझो, नहीं तूफान मन में बहुत आएंगे लेकिन घबराना नहीं है तुमको।
अरे ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट थी कल की मुरली का, माया किसी को नहीं छोड़ेगी,
छोड़ेगी
बड़े बड़े दीपकों को भी बुझाएगी, पर तुमको मजबूत रहना है, मुरझाना नहीं है। ये तो सबसे पावरफुल पॉइंट है
कल की
है, लास्ट पेज, लास्ट पेज, किसी को भी माया छोड़ेगी नहीं, जितने बड़े मारे थे उतनी बड़ी माया, हर एक की अपनी अपनी माया, सेवाधारियों की अपनी माया, हर एक की अपनी 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 माया,
माया देख लेते थे थोड़े इसका काम तो बड़ी की माया।
आज मुरली में भी बाबा ने माया का, माया जिस शक्ति की, जिस खजाने की तुम में कमी होगी उसी रूप में माया वहाँ आएगी आज के, क्योंकि माया चतुर है। आज की मुरली में लास्ट बेच, क्योंकि माया लास्ट पेज लास्ट सेकंड लास्ट लाइन, क्योंकि माया चतुर है। माया की तो कितनी महिमा की है बाबा ने, माया सर्वशक्तिवान है, माया जबरदस्त है, माया अजगर है, माया रुस्तम के साथ में रुस्तम है, सर्वशक्तिवान है।
बाबा आए थे, बाबा ने कहा ना मैं सबके पास भेजूंगा माया को, ध्यान रखना
तो भेजने की जरूरत नहीं
होती है।
हाँ हाँ
बिल्कुल,
फरमान पर नहीं चलते तो माया को भेज देते बाबा।
और एक अच्छा पॉइंट था, ब्रह्मा मुख वंशावली स्वयं के कहलाते हो तो ब्रह्मा के मुख से जो निकला है उसको तुमको मानना पड़ेगा। मुरली में था वही 16 तारीख की मुरली में मंडे की, ब्रह्मा मुख वंशावली तुम स्वयं को कहलाते हो तो ब्रह्मा मुख से जो निकला हुआ है उसको तुमको मानना पड़ेगा।
पहले
थोड़ा तरीके मुझे बहुत अच्छा वाक्य लगा मुझे
उसमें, ज्यादा यही ज्यादा था ब्रह्मा मुख वंशावली तुम कैसे हो
एक है ना, उसी में से कैच करना है, यही हमको एक कला है। उसी मुरली में 10 लोग पढ़ते हैं पर उसको कैच करना है नया।
सही बात है,
मुरली सुनना इसकी रीति से है कि इसमें से मुझे नया क्या मिलेगा। नहीं तो किसी को भी मुरली पूछो क्या है, अरे वही तो है जो कल था
बाबा को,
क्योंकि मर्ज है ज्ञान, सारा खेल मर्ज और इमर्ज का। हम यहाँ चिंतन करते डिस्कस करते हैं तो इमर्ज होता है, अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो वो इमर्ज
रहेगा।
मतलब पता है क्या है, सुन भी लिया पर वो मर्ज है, मर्ज ज्ञान कभी शक्ति नहीं बनता है। पर जब इमर्ज मुख से निकल रहा है ना, वो किसी भी रीति से निकलते रहना चाहिए बस।
और सही बात है, जो जीवानी निकलता है ना इसकी शक्ति
ये जो है ना, ये निकलते हुए आप भी सुन रहे हो, मैं खुद भी सुन रहा हूँ, मेरा निकला हुआ और मेरे अपने नए संस्कार क्रिएट हो रहे हैं इस बोलने से, ज्ञान के पुराने संस्कार डिलीट हो रहे हैं विकार के और नए संस्कार क्रिएट हो रहे हैं इससे। तो इसके लिए बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है। केवल गए मुरली सुनी और आ गए, ये है पुरानी चाल।
नहीं वो फर्क तो पड़ता है, मैं तब से कागज निकाल के ना तो जो मुरली सुनने के बाद जो याद आता है ना वो लिखता हूँ फिर। मगर
एक है ना, गए मीठे बच्चे प्रश्न गीत फिर रख दी बाजू में, फिर पूरा सुना धारणा के लिए मुख्य सार स्लोगन वरदान रख दिया। ये जो मेथड है ना इसमें याद करने के याद रहने के चांसेस 1-2% है बस, ज्यादा इसमें याद नहीं रहेगा। वो उसको अलग अलग नहीं रखो, मुतली स्लोगन वरदान कुछ नहीं, ऐसा अलग अलग नहीं, एक ही केवल पॉइंट को ढूंढो बस। पॉइंट क्या है बस, वो ये वरदान था, ये था, ये महावाक्य था, ये प्रश्न था, होता ये
अच्छा लगा।
हाँ लिखना है बस, छोटे से कागज में या आप जैसा कर रहे हो ना वो हो गया, वहाँ कुछ नहीं करो, उसके बाद में याद करो क्या बोलो और तुरंत याद करो जो सुना ना उसको। नाश्ता करते करते सारी मुरली रिवाइज हो जाएंगे, रास्ता खत्म हमारी मुरली मन के अंदर रिवाइज। वो अगर कर दिया ना तो दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने
नाश्ते में पूरी
प्रिंट होनी चाहिए प्रिंट, क्योंकि ज्ञान समर्थी स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप, जो स्मृति स्वरूप है वही समर्थी स्वरूप है। परिस्थितियों में क्यों भूल जाता है ज्ञान, क्योंकि हम भूल जाते हैं,
भूल जाते हैं
ट्रायल एंड एरर। हो गया एक हफ्ते का, आज की मुरली में आ जाए। एक दो तीन, तीन बच्चों को देखा हम कौन है उसमें से, पहले ये तो सोचो, रुको अभी रुको, पहले वो नहीं हम कौन है उसमें से, दानी तक पहुंचे हैं क्या,
महादानी
तक कि दानी से भी नीचे है कोई कोई तीव्र पुरुषार्थी जो है वो दानी तक तो पहुंचना ही चाहिए, दानी तक तीव्र पुरुषार्थी नहीं, वरदान तो अष्टरत्न है, वरदान 108 वरदानी दूसरे, वरदानी बहुत ऊंची है, दानी मैक्सिमम महादानी। वरदानी की परिभाषा जो है वो बहुत सही है, वरदान मतलब उनके मुख से निकले हुए बोल वरदान बन जाएगी किसी के लिए, बहुत ऊंची बात है। तो तीन बच्चों को देखे, सबसे पहला महादानी, महादानी अर्थात भाई आप भी बोलो ना
सब बोले सब बोलो,
भाषण नहीं है भाषण तो
परिवार है
महादानी अर्थात
जो यथाशक्ति है
महादानी, नहीं महादानी नहीं वरदान, सॉरी सॉरी वरदानी, वरदानी अर्थात सर्व खजानों से जो संपन्न है, सर्व अर्थात कितने 9 खजाने, कितने खजाने, कितने 9 खजाने,
क्या बोला था, सर्व सिद्धि 9, सर्व विद्धि 9 सिद्धि, क्या बोला सर्व
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अकबर दीन जानकी माता। जब हनुमान आता है जानकी माता के पास और अंगूठी दिखाता है कि राम जी ने अंगूठी दी, तो जानकी उसके सर पर हाथ रख देती और बोलती है अष्ट सिद्धिया और नव निधिया के दाता सुबरदी न जानकी माता। तो आठ शक्तियां हैं और नौ खजाने हैं, निधिया है। ज्ञान की निधिया है, तीन
ज्ञान गुण शक्तियां
नौ है, नौ
पवित्रता
शांति ज्ञान गुण शक्तियां पवित्रता चार हुई। अभी आगे को बोलो,
दुआओं का खजाना
दुआए पांच,
नौ
समय छह, संकल्प सात, श्वास श्वास और समय एक हो गया, उसको उसमें डाल दिया। आगे दूसरा बोलो, श्वास को और समय को एक नहीं है, वो एक एक है, अलग अलग नहीं है। और बोलो, सेवा का खजाना नहीं है, खुशी का खजाना,
खुशी खुशी
दुआओं का खजाना है, पुण्य कर्मों का कर्मों का खजाना है। तो ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प पवित्रता खुशी पुण्य कर्म और दुआएं, ये है नौ खजाने। इनमें से अगर एक भी खजाना बाबा ने बोला सब है। एक मुरली में वाक्य आया आज की लास्ट लाइन, लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ, सब है इसमें कुछ नहीं हो जाओ, इतना हो कि स्वयं भी खाओ और दूसरों को भी संपन्न बनो बनाओ। इतना यही आज की मुरली का लास्ट पैराग्राफ, सब है
कुछ नहीं हो जाए
इसमें कुछ नहीं हो जाओ,
इतना जमा करो,
इतना जमा को खुद भी खाओ दूसरों को भी संपन्न बना सको, ये है महादानी वरदानी। वरदानी अर्थात सर्व गुणों सर्व खजानों से संपन्न। अगर एक भी खजाना कमी है तो माया उसी रूप में वहां पर ही अटैक करेगी, क्योंकि माया चतुर है। मतलब नौ खजाने जो गिना है ना अभी, उसमें से एक खजाना है खुशी, मतलब एक दिन खुशी कम हो गई थोड़ी सी, मतलब वरदानी नहीं,
वरदानी
माना वरदानी मतलब आठ 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 अष्टरत्न छोड़ दो उनको। वरदानी मतलब आठ आठ या एक सौ आठ
है ना।
खुशी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण पवित्रता। नौ खजाने में जो नौ एक एक खजाने को देखो और वो जो संपूर्ण है वही वरदानी है, बाकी नहीं। खुशी पवित्रता समय, समय जो वेस्ट कर रहा है उसको वरदानी की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो थोड़ा भी अगर समय वेस्ट करता है कोई एक सेकंड भी अगर वेस्ट करता है समय। ज्ञान, ज्ञान की संपूर्ण ज्ञान हमारे बुद्धि में हो, ज्ञान गुण 100% सर्वगुण संपन्न। शक्तियां आठों शक्तियां, आठ हो और बाकी कितनी सारी है बाडी, बाकी भी कितनी गिनाई है बाबा ने, सत्यता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति,
अनुभव की शक्ति,
अनुभव की शक्ति, महसूसता की शक्ति, ये दूसरी शक्ति है। दुनिया वालों को ज्ञान कोर्स कराते समय वो आठ शक्ति हम सुनाते हैं, वो छोड़ के ये दूसरी
बाद में चलता कितनी है
लोगों को पहले बताते हैं आठ शक्तियां है राज्यों से आठ मिलती है बाबा, फिर बोलते रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर तुमने होनी चाहिए, महसूसता की शक्ति होनी चाहिए, फिर बोलते टचिंग पावर और कैचिंग पावर होनी चाहिए, ये तो पहले बताया नहीं था, ये बाद में पता चलता है।
वो आठ शक्तियां बताने के बाद फिर इन शक्तियों को,
शक्तियां एक्चुअली एक ही है, अलग अलग शक्तियां नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो एक ही है, पर वो करंट से फैन भी चलता है और लाइट भी लगता है, पर जब हमको गर्मी हो रही है तो लाइट से काम नहीं चलेगा, फैन ही चाहिए, पर है वो एक ही इलेक्ट्रिक करंट। शक्ति ईश्वरीय शक्ति एक ही है, कलर एक ही है, वो सात जो इंद्रधनुष दिख रहा है ना वो कोई अलग अलग कलर नहीं है, कलर एक ही है, ईश्वरीय शक्ति भी एक ही है।
लेकिन
पर जब हमको फैन की जरूरत है, गर्मी जब हो रही है तो फैन ही चाहिए, जो समाने की शक्ति है वहां सामना करने की शक्ति नहीं चलेगी। जब लाइट चाहिए अंधकार है, फैन चालू कर दिया तो दिखेगा थोड़ी ना, शक्ति है एक ही
लेकिन उसका रूप अलग अलग है,
अलग अलग रूप में विभाजित है, मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, अभिव्यक्त हो रही है अलग अलग रूपों में, पर है शक्ति एक ही। ऐसे थोड़ी ना आज मैं ये शक्ति धारण करता हूँ, कल वो शक्ति धारण करता हूँ, कल ये करता हूँ वो करता हूँ, ये तो बस
परम टाइटल मास्टर सर्वशक्ति,
एक ही शक्ति धारण कर लो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तब आ गया
आज था ना इसी में।
आगे आएंगे हाँ। तो महादानी अर्थात मैंने तो छोड़ दिया ना उसको, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, छोड़ दिया उसको। तो वरदानी अर्थात जिनमें संपूर्ण सर्वशक्ति है, दूसरा है महादानी, महादानी अर्थात यथाशक्ति, थोड़ी है थोड़ी नहीं है, और तीसरा दानी, दानी में
अभी अभी
अभी अभी आया,
अभी अभी
अभी अभी खाया, थोड़ा खाया और दिया, अभी अभी मेल आया, दादी जानकी का क्लास, इसका क्लास, उसका क्लास, हमको मेल आया, हमने फट से फॉरवर्ड कर दिया, पढ़ा तो है नहीं हमने, खाया तो दूर की बात, बहुत अच्छा है, बहुत दूर है, महादानी महादानी है, थोड़ा सा खाया, अभी अभी आया मेल, फटाफट फॉरवर्ड, अभी मेल आया फॉरवर्ड, अरे पढ़ो तो पांच मिनट शांति से तो पढ़ो, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड
दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण।
और ये आठ आठ दस दस मेल एक ही व्यक्ति की आ जाती है, ये भी भेजो ये भेजो, कितने कौन पड़ेगा,
सारे हंड्रेड 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 हंड्रेड। पहला अर्थात सहयोग देने वाला, दूसरा अर्थात मार्गदर्शन करने वाला, तीसरा मार्ग बताने वाला,
इन दोनों में डिफरेंस।
चलो अभी पहला पे आते हैं, वरदानी। वरदानी क्या करता है,
शक्ति,
एक पैराग्राफ है उसके ऊपर,
निर्बल को,
निर्बल को कैसे शक्तिशाली बनाता है,
अपने ज्ञान गुण और शक्तियों
के, हाँ ज्ञान गुण और वरदान से, हिम्मत से, उल्लास की शक्ति से और खुशी के खजाने से, सहयोग की शक्ति द्वारा
शक्तिशाली,
कमजोर को शक्तिशाली बनाता है, निर्बल को कमजोर को शक्तिशाली बनाता है, वो अपनी शक्ति से उसको शक्तिशाली बनाता है, मतलब सहयोग से शक्तिशाली बनाता है, सहयोग मतलब वो वैसा वाला सहयोग नहीं, स्थूल सहयोग वाली बात नहीं है, इधर कोई कमजोर है और बोलता है मेरे में ये कमी है, एक है कि उसको मार्ग बताना, ये करो वो करो वो करो, ये है सेकंड कैटेगरी, और ये उसको शक्तियां दे रहा है अपनी, और उस शक्ति से ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ेगा, ये है वरदानी।
कोई था एक मुरली में, ये सुनते किसी की कमजोरी सुनते हुए भी उसी समय तुरंत उसके प्रति हम शुभ भावना कामना रख दें, शुरू कर दें, वही वरदानी है।
किसी की गलती नोट नहीं करो, पर जब गलती देखते हो तो सहयोग के नोट दो, 79 की मूर्ति,
21 79।
तो ये वरदानी, फिर दूसरे हैं महादानी, तो महादानी क्या करते हैं, अभी
मार्ग दर्शन,
महादानी क्या करते हैं, वो तो एक शॉर्ट में बता दिया लास्ट में, महादानी करते क्या है, वो
रास्ता बताएंगे, ज्ञान के खजाने
के पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं, पुरुषार्थ की युक्तियां बताएं, आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, समर्थी बना समर्थ बनाने के निमित्त बनते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं, मतलब उसको मार्ग बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसको बताते हैं कि ये करो तो हो जाएगा, स्पष्ट रास्ता बताते हैं, बाबा ने आज बोला उसमें स्पष्ट रास्ता बताते हैं उनको,
ले जाएंगे
तो उनको स्पष्ट रास्ता बताते हैं, ये भी बहुत ऊंची कैटेगरी है, कोई कम इसलिए तो मैंने इसको रखा है, ये बहुत ऊंची कैटेगरी है, मतलब वो खुद सीमत पे रहना चाहिए तो ही वो दूसरों को रास्ता बता सके, स्पष्ट रास्ता बताएगा,
हाँ
तो वो स्मृति भी दिलाते हैं, समर्थी बनाने का निमित्त बनते हैं, पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं, आत्मा ये है महत्व। फिर है दानी, दानी क्या करते हैं,
मार्ग बताने वाले,
नहीं
अच्छा ये पहले की बात आ,
ये तो आपने लास्ट में बाबा ने तीनों तीनों लाइन में तीन ये बीच का है ना,
मार्ग जाने तो मार्ग दिखाने वाले हो गए ना,
मार्गदर्शक है वो,
मार्गदर्शक
मार्गदर्शक थोड़ी ऊपर की स्टेज है, अच्छा। अभी नीचे वाले हैं जो कि ज्ञान सुना, अच्छा लगा, अनुभव किया और फिर इसका वर्णन कर आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करते हैं,
ये
है दानी, मतलब हम लोग मतलब अनुभव किया, ज्ञान सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव किया और फिर वर्णन करके दूसरों को सुनाया तो दूसरों को लगा भी चलो भाई बाबा की तरफ जाना चाहिए, अच्छा है इसका। आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित कराते हैं, ये है दानी। वो नहीं बोला बाबा, बस इतना बोल के छोड़ दिया बाबा ने। वो मेल वाली बात बताई दानी के लिए, वही है
वो खाया पिया पशुओं वाली अलग बात आई,
वो दूसरा वो अभी आएंगे हम
तो आगे अभी।
तो ये बाबा ने बोला ये सबका अभी अपने आप को चेक करो कि मैं कौन हूँ, दानी वरदानी महादानी। सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स, सेल्फ रियलाइज करो कि अपने आप को अपनी कमियों से कहाँ तक क्या किया, मुक्त नहीं लिबरेट,
लिबरेट किया।
तो यहाँ पे वो खत्म हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज। पाप है लिबरेटर, तो मैं कौन हूँ, मास्टर लिबरेटर। तो मास्टर लिबरेटर बन क्या करना है,
आशीष भाई
नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, और सर्व आत्माओं को
रहम दिलवान,
स्वदेश स्वस्वरूप स्वदेश की स्मृति दिलानी है, वो वैसा बोला है ना, स्वदेश और स्वस्वरूप की स्मृति दिला के सामान्य स्थित रहना है, ये है लिबरेट करना। फिर आगे वो बोला कि आठ प्रकार के बंधन जो बताए लोगों को, आत्माओं को होते अलग अलग प्रकार के बंधनों में आत्मा फंसी है, तुमको उनसे मुक्त करना है। कौन कौन से बंधन है, आठ। पहले तन का बंधन, तन का बंधन में क्या आएगा, बीमारी आ गई तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, याद भी कुछ नहीं होता। दूसरा दूसरा बंधन संबंध का बंधन, संबंध इतने डिस्टर्ब्ड है कि उसमें से कहां योग भी होता नहीं है, अगर डिस्टर्ब संबंध है किसके तो। दूसरा संबंध, तीसरा इच्छाओं का बंधन, चौथा संस्कार, दुख देने के संस्कार है किसी को तो वो भी वो दुख का संबंध है, दुख का बंधन है। चौथा पांचवा स्वभाव नहीं है, संस्कार नहीं हो गया, संस्कार विकारों का नहीं है, नहीं कर्मेंद्रियों का नहीं है। दूसरे बताओ बंधन कौन से है, चार हो गए। प्रभु प्राप्ति न नहीं हो रही है इसके लिए जो भटकते हैं, उस दुख का बंधन,
साधना कर रही भी
वो नहीं, वो लास्ट है, ये दूसरा, वो दूसरा है। वो लास्ट है, वो दूसरा। तो ये प्रभु प्राप्ति नहीं हो रही है उसमें भटक रहे हैं अंधकार में, उसका बंधन। दूसरा है जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है इसके लिए असंतुष्ट है, उसका बंधन, लक्ष्य नहीं है। और फिर है पशुओं समान खाया पिया जीवन बिताया, हाँ उसका बंधन, असंतुष्ट रहे वहाँ है
असंतुष्ट,
हाँ तो वो एक बंधन। और लास्ट का मुझे समझ में नहीं आया, जो बाबा ने बोला ना धारणा कर रही है अध्यात्म में चल रहे, वो क्या है ना, वो समझ में नहीं आया, वो वाक्य समझ में नहीं आया। ये जो है ना क्या बोल रहा है, साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त होते, पुकारते चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत, ये क्या है इसका अर्थ, साधना करते नहीं बीके के लिए, ये देखो ना कैसा, साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त होते नहीं, होते नहीं, होते पुकारते चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। समझ में नहीं आने की, मैं सोचा इसके बारे में पर ये क्या है समझ में नहीं आया, किस प्रकार का बंधन नहीं है। अरे अगर मंजिल को प्राप्त है तो फिर भी चिल्लाते और पुकारते, उसका बंधन बाबा ने,
या तो नहीं होता बीच में,
नहीं होना चाहिए,
तो नहीं होना चाहिए,
तो वह नहीं चाहिए ना, वो हाँ है, मंदिर पर पहुंच गए, क्या किया, साधना की, सब कुछ किया, अध्ययन किया तो, और उसका बंधन वहाँ पे चिल्ला रहे, वहाँ नहीं चाहिए थे, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर
जो बाबा बोलते हैं आवाज बहुत स्लो होता
है। दूसरा आगे तो बाबा ने बोला अपने रहम दिल स्वरूप को विमर्श करो,
विश्व कल्याण
खुद में बिजी हो या रहम दिल के इसमें विमर्श करो, ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ,
फिर उसके बाद बाबा ने बताया था शक्तियों के ऊपर,
शक्तियाँ नहीं, बचपन में जैसे बचपन में स्टडी की जाती है और बड़े जब होते हैं तब
तो दूसरों के लिए
रचना की, रचना के लिए तुम ये करते हो, पालना जिम्मेवारी संभालते हो, उसी प्रकार अलौकिक, ये लौकिक में, और अलौकिक में अपने आप को पहले परिपक्व बनाते हो और फिर बड़े होके विश्व से विश्व कल्याणकारी बन, विश्व कल्याण करते हो तो स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी साथ साथ चलता रहे, दोनों साथ साथ चलते रहे, वो बाद में
उत्तर
ये उधर में फिर उसके बाद
आगे से तैयारी करना पड़ेगा।
नहीं उसको पढ़ना ही वैसे कि वो वैसे ही याद रहे, वो बाद में याद रहता है, मतलब वो बाद में
कभी भी याद आ सकता है,
हो सकता है विवेकानंद की आत्मा
उसे उल्टी आत्मा।
फिर उसके बाद में बाबा ने बोला सदा अपने आप को ज्ञान के खजाने से आत्माओं को कैसे भरपूर करो, ज्ञान सूर्य बन, दृष्टि वृत्ति स्मृति शुभ भावना के संकल्प से। हाँ वो दो तीन बातें हैं, सबसे पहले तो अपने गुणों की धारणा से, ज्ञान की धारणा से, गुणों की धारणा से ज्ञान सूर्य बनकर, दृष्टि वृत्ति स्मृति से अर्थात श्रेष्ठ संकल्प से विश्व की आत्माओं को किरने दो, वो बोला। और वहीं पे बोला कि जैसे वो सूर्य एक ही स्थान पर रहकर सब ओर का अंधकार समाप्त करता है, वैसे तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व की आत्माओं के दुख को दूर करो, फिर हम दिल बनो। किचड़े को समाप्त करता है वो दूसरा बता रहे, ठीक है वो भी ज्ञान सूर्य किचड़े को समाप्त करता है, एक बोलिए मैं चलो नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद स्वयं को देखो और सेवा को देखो, स्वयं को और सेवा का बैलेंस, स्वयं का और सेवा का बैलेंस, स्वयं को भी भूलना नहीं है, सेवा को भी भूलना नहीं है, वो बोला बाबा ने वहां पर, है ना। और टाइम है उसको नुमा शाम का टाइम है, अभी
दोपहर ही है,
20 मिनट है और अभी दोपहर है, फिर आगे 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 ये हो गया।
शक्ति वाली बात सुनता है इसके,
कौन सी
सर्वशक्तिवान का अनुभव करना, बाप पर शक्तिवान, तो जो बाप की शक्ति है वो अपने अधिकार समझो उनका, उनको अधिकार समझ कर
वहाँ। हाँ अभी इसमें ये एक चीज रहेगी, हाँ ये जो जैसे तुम अपने आप को संपन्न करो, बाकी सबको संपन्न करो, जैसे वो राजा होता है ना, वो प्रजा जाता है बीच बीच में गुप्त वेश में जाता है, संतुष्ट है और संपन्न है, सुखी है, देखता है प्रजा
देखता।
तो ब्राह्मणों के ये जो भी रीति रस्म बने हैं वो सबका फाउंडेशन संगम युग का समय है और ब्राह्मण है, इसके लिए तो अभी तक भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं हर रस्म में, तो ये तुम्हारे राजा है, तुम्हारा तुमसे सीखे हुए कर रहे हो, तुम अभी नहीं कर सकते हो। हाँ फिर उसके बाद फिर वहीं पे बाबा ने बोला तो ये जो परिक्रमा जो लगाते हो, तीन लोगों का परिक्रमा लगाते हो पर तो विश्व की परिक्रमा लगाने में क्या मुश्किल है तुमको, इसके लिए मास्टर रचता बन, विश्व की क्या करो रेख देख, बोला देख रेख लिखा रेख देख लिखा है उसने,
देख देख लिखा
रेख देख लिखा।
अच्छा
अच्छा मुझे लगा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है,
तो बाबा तो बिंदु है ना यार।
विश्व की कितना अच्छा वाक्य है ये, देखो वाक्य की रचना कितनी है, विश्व की देखरेख करो, जैसे माँ बाप है ना बच्चों की देखरेख करते हैं, वैसे तुम विश्व की देखरेख करो,
विश्व के बाप भी बड़ी बड़ी बात है
ये हमको ना, मुझे अपना याद है, हम लोग जो रात में ना राउंड ले लेते हैं रात का, तब ठीक है ना पेशेंट, हाँ चलो चलो अभी आईसीयू में ये ठीक है, कभी भी ठीक है, वो पल्स ठीक है, ये ठीक है, उधर ठीक है, चलो अभी चलो एक बार राउंड ले लिया ठीक है तो चलो। तो वैसे विश्व में सब ठीक है ना, तो दुखी तो नहीं है, अशांत अपराध तो कोई तो नहीं है, इनको ये देते हो चलो सो जाओ। ये सुन के मुझे वो याद है, विश्व का क्या संसार की सारी रोगी आत्माओं को देखना है, उदाहरण बता रहा मैं अपना पर्सनल वैसे ही बता रहा वो हो गया। उसके बाद में फिर ये मुरली यहाँ खत्म हो गई ना, सदा सर्व खजाने से, फिर वो आगे बाबा ने आगे चलाई आएगा अभी। उसके बाद में फिर विश्व की परिक्रमा में बाबा वापस आ गए, और ये परिक्रमा में फिर बाबा ने बोला कि ये नुमाशाम का पॉइंट है वहाँ पर, कि नुमाशाम को चक्र का चक्र कहा जाता है ना, मतलब चक्र का समय है ये, तो तुम भी नुमे शाम का चक्र जब लगाते हो तो किसी को फरिश्ते का साक्षात्कार, किसी को बिंदु का साक्षात्कार, ज्योति साक्षात्कार, किसी को किरणें आते हुए दिखेगी और जगह जाएगी ऐसा लगेगा, फिर उसके बाद में ढूंढेंगे कहाँ से आई ज्योति, कहाँ से आई किरणें, कहाँ से आई, और उसको जानने के लिए समझने के लिए साइंस वाले भी समीप आ जाएंगे, वो समय ढूंढते हुए आ जाएंगे कहाँ से आई थी ज्योति, कहाँ से आए थे फरिश्ते। ये जो मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म वाले है ना, वो देवी देवता को कहाँ मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं,
फरिश्तों को मानते
हैं, उनको जो है ना क्रिश्चियन और मुसलमान को जो ज्ञान में नहीं है उनको ये दिखेंगे सबसे ज्यादा फरिश्ते, क्योंकि देवी देवता को तो मानते ही नहीं, दिखा भी तो क्या मानेंगे, हनुमान जी का साक्षात्कार तो मानेंगे क्या, हटाओ बोलेंगे हनुमान जी कहाँ है और अल्लाह कहाँ है, उसको देवी का साक्षात्कार कृष्ण के भक्त कहाँ।
सूरज भाई एक बार क्लास में बता रहे थे, ऊपर से कुछ ऐसा लाइट आता था, सब साइंस जाके सब बैठ के रिसर्च कर
रहे,
ऊपर वो पड़ता था जल जाता था,
तो ये बाबा ने बोला। उसके बाद में नेक्स्ट फिर कमजोरियों के ऊपर आ गए बाबा, कमजोरियों को मिटाने का साधन है बाप को
सब कुछ दे दो,
सब कुछ बाप को दे दो, बाप के हवाले कर दो, जिम्मेवारी बाप को दे दो, एक बाप दूसरा ना कोई,
निश्चिंत हो जाए
और इसको स्वतंत्र हो जाए, दृढ़ संकल्प रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो ये जो है ना अधिकारी, अधिकारी स्वरूप में अगर स्थित होंगे तो अधीनता समाप्त हो जाएंगी, मैं बाप का अधिकारी बच्चा हूँ, विश्व के मालिक बालक, विश्व के मालिक का बालक बालक है, इस नशे में रहो। फिर वहां फिर आगे बाबा ने बोला कि सर्व अधिकार उसका है ना, तो उसके सारे अधिकार मेरे, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
तो ये स्थिति बार बार रिवाइज करने से बाबा ने कहा आपको सर्वशक्तिवान का अनुभव होगा।
रिवाइज और रियलाइज, सदा बार बार रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी उसका असर होगा,
रियली होगा।
अगर किसको, जैसे वो सूरज मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक छोटा सा बच्चा है उसको डर लगता था भूत का, इतना सा छोटा 5-10 साल का होगा, तो उसकी दादी ने उसको समझाया कि भाई तू बोलते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, उसको क्या समझ में आता है मास्टर सर्वशक्तिमान क्या है, और उसका भय खत्म हो गया, खत्म हो गया, मतलब
एनर्जी
शब्दों में भी, मंत्र में क्या है, मंत्र में पावर है ना, मंत्र में गायत्री मंत्र में पावर कहाँ से आई, क्या है उसमें, मंत्र की रचना है, शब्द अलग है, अर्थ अगर देखा जाए वही हम हिंदी में अगर 10 बार बोले तो पावर नहीं आएगी क्या, संस्कृत में बोलने से पावर आ गई ऐसा तो है नहीं, इंग्लिश में बोलने से भी आएगी, तो ये भी अगर हम बोले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, इसको अगर संस्कृत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक मंत्र बना दिया जाए और लोगों को दिया जाए ना तो कितना फेमस हो जाएगा। लोगों को संस्कृत चाहिए मंत्रों के लिए, किसी को बोलो भाई तू मास्टर सर्वशक्तिमान है 108 बार करो जाप, नहीं करेगा, कहेंगे कहाँ से लाया। संस्कृत में ट्रांसलेट करके उसको दीक्षा दीक्षा देके
नहीं, इसमें मन की एकाग्रता बढ़ जाती है ना, जो जैसे जाप करते रहो तो मन जाएगा नहीं इधर उधर, शक्ति जमा होती जाएगी,
इसलिए भक्ति में जाप का भी अपना महत्व है,
अपना
महत्व, ऐसे ही थोड़ी ना करते हो,
एकाग्रता
हाँ भजन में भी एकाग्रता ही है। वो हरे कृष्णा वाले, मैं उधर जाता था ना हरे कृष्णा के पास, कितना हो 1,16,000 बार जाप करते एक दिन में, सुबह से चालू होता है 4 बजे उठते 6 बजे तक कंटिन्यूस जाप, सब मिलके बैठ के संगठित जाप। हमारा संगठित योग, उनका संगठित जाप
1,16,000
एक दिन का नियम है उनका, जो भी समर्पित बने होगा ना वहाँ पे हरे कृष्णा में इस्कॉन में, तो उनका नियम है, वो जो सन्यासी ब्रह्मचारी है उसके इतने सारे नियम है, बाप रे बाप, भयानक नियम है, कई कई तो हमसे भी कड़े नियम है उनके, कुछ कुछ तो वो करना ही पड़ता है उनका, उनके नियम है, सन्यासियों के नियम अलग है, भक्तों के नियम अलग है, जो भक्त गृहस्थी भक्त है ना उनके
उनके नियम
अलग अलग बैठना पड़ता है उनको, ये इधर बैठेंगे वो इधर बैठेंगे, ऐसे बहुत कड़े नियम है उनके,
इसलिए सुनते नहीं है वो भी।
हाँ वो इतना जल्दी हमारे से प्रभावित नहीं होते,
नहीं होते प्रभावित, नहीं जल्दी,
बहुत कट्टर होते हैं वो, उनके नियम वो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि ये हमारे नियम तो छोटे लगेंगे उनको, ऐसा है,
यहाँ आते हैं ना नहीं ज्यादा नहीं सुनते,
इस्कॉन वाले तो बहुत,
मैं काफी रहा था उनके साथ,
इस्कॉन का मेन बेंगलोर में
सब जगह है, बेंगलोर में मुंबई में है,
बहुत आलिशान होता है,
बहुत आलिशान होता है, प्रभुपाद हाँ नौ है मायापुर, वो सबसे मेन है, तो क्योंकि सब कुछ चालू तो चैतन्य महाप्रभु का ही है ना, उनको ही फॉलो कर रहे हो, हरे कृष्णा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मुरली है, हाँ ये हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में। हाँ बाबा ने और एक ये यहाँ पे मिली थी बीच में एक पॉइंट आ गया, ब्राह्मण बन गए तुम, उनको लॉटरी मिल गई, फोटो में कोई हो
ब्राह्मण परिवार के बन गए,
बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई। उसके बाद में ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी सामना करना हो आगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सामना करना पड़े, पर रुकना नहीं है, हटना नहीं है, मंजिल को पाना ही है, क्योंकि एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, ये गारंटी है।
पहले एक स्लोगन था ना, मंजिल को पाना है,
कुछ भी हो आज के दिन मंजिल को पाना ही है। फिर बाप के साथ का बोला, सदा बाप के साथ रहते हो, ये मुरली में इतने सारे पॉइंट्स हैं। अभी दूसरा पॉइंट है, सदा बाप को अपने साथी समझते हो, अगर सदा साथ समझेंगे तो सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा विजयी हो जाएंगे। ये है वहाँ पे। फिर उसके बाद में सहज बात कौन सी है, नेक्स्ट पैराग्राफ, सहज बात, सारी जिम्मेदारी बाप को दे दो, ये है सबसे सहज बात। खुद मुश्किल अगर देते नहीं हो तो मुश्किल अनुभव करते हो, जैसे भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ राम हवाले कर दो,
मेरी नैया राम हवाले,
सब कुछ राम हवाले कर दो। बीच में एक ये था ना मुरली में, पंडित जी नहीं बनना है बाबा ने बोला, वो भाषण करता था, सबको बोलता था राम नाम लेके जाओ, और जब खुद बोला चाओ अभी तो बोले नाव कहाँ है। यही था ना अभी एक हफ्ते में, नाव कहाँ है, बाप है कि भैया तुम भी नाव चलाना सीख रहे हो। ये दूसरी मुरली में एक जगह था, शरीर और आत्मा है पुरानी नाव,
जब शरीर आत्मा है खाली तो शरीर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी था को
कोई। फिर लास्ट में ये हो गया, उसके बाद में
कल्याण की बात,
हाँ मेरा खत्म तो नष्ट मोह हो जाएंगे, प्रागदिल हो जाएंगे, अगर पुरानी कीचड़ पट्टी साथ रखते हो तो बीमारी आ जाएगी, इसके लिए सब कुछ बाप को दे दो। और एक मास्टर सर्वशक्तिवान का एक पॉइंट हम बहुत अच्छा जो भूल गए हैं वो यहाँ था, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी विघ्नों से परेशान है तो बेचारे दूसरे का क्या होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पैराग्राफ चेंज हो गया, वहाँ निश्चय बुद्धि का हो गया वो पॉइंट, निश्चय बुद्धि अर्थात जो सदा निश्चिंत जो निश्चिंत स्थिति वाला, उसमें भी दो तीन अच्छी बातें हैं कि कुछ सोचो नहीं, क्या क्यों कैसे में नहीं जाओ, त्रिकालदर्शी होकर निश्चिंत रहो, हर कदम, हाँ ये है, हर कदम में कल्याण है, अकल्याण दिख रहा है पर उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि तुमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, तो ऐसी आत्माएं अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देती
है। कल्याणकारी बाप का हाथ,
हाँ एक मुरली में प्रश्न था, संगम युग पर ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों के साथ क्या नहीं हो सकता है, एक साकार मुरली में प्रश्न था, अकल्याण नहीं हो सकता है, हर अकल्याण के सीन के पीछे, पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। अच्छा वो चोट लगती है वो वाली ना, वही समझिए, बचपन में किए कहानी, हर चीज में कल्याण है,
तो उसको जेल में डाल दिया, अच्छा हुआ मैं तो उसको ही बलि चल जाती
थी। फिर संतुष्टता दूसरी पॉइंट, अनकनेक्टेड दूसरी, कनेक्टेड दूसरी पॉइंट, सदा संतुष्ट हो। जो सदा संतुष्ट है वो, जो संतुष्ट नहीं वो बाप से बहुत दूर है,
बहुत दूर,
बाबा ने बोला वहाँ पे, जो बीती जी बीती कर परखने की शक्ति से परखते आगे चलते चलो। ये हो गया, फिर लास्ट में वापस आ गए, अभी चेक करो अपने आप में सारे खजाने हैं, कौन कौन से खजाने हैं, कितने हैं, सब है,
कितने कितने
सब है, ये सोच के खुश नहीं हो जाओ,
लेकिन
इतना हो कि खुद भी खा सके हो और दूसरों को भी संपन्न बना सको। तो पूरा मुरली का सार में ये तो पहले तीन बातें यहाँ पर, और लास्ट में ये अलग 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 में बाबा ने एक जगह सदा संतुष्ट, सदा विजयी, सदा सुखी, सदा निश्चिंत, सदा निर्विघ्न, सारी पॉइंट कंबाइन कर दिए, सदा खुश, विश्व कल्याणकारी, बैलेंस स्व का और विश्व का, सेवा का, उसके बाद में रहम दिल, विश्व परिक्रमा, कमजोरियों को दूर करना है तो बाप को सब दे दो, सबसे सहज बात है, सारी जिम्मेदारियां बाप को दे दो, और ये सब इधर अलग अलग प्रकार अनेक प्रकार के बंधन है आत्माओं को, उनको बंधनों से छुड़ाओ, लिबरेट करो। लिबरेट कर सकते हो या फिर अपने आप में बिजी हो? देखने आता है या अपने में बिजी हो?
बड़ा गहरा मामला है
ये, आज की होगी तो बाप रे, इसको डाइजेस्ट करने में मतलब वो टाइम एक 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 गहराई में देते हैं। केवल पढ़ा, बैठे क्लास में सुन लिया, आ गए, बहुत अच्छी थी आज की मुरली। क्या थी यहाँ एक पैराग्राफ में इतना माल है कि इसको मतलब ये कुछ भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट तो होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, रक्त तो बनना चाहिए, शरीर शक्तिशाली बनना चाहिए। ये तो मन का भोजन है, तो मन हमारा ये पढ़ने से पहले जो है, पढ़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही हम समझेंगे इसको हमने पचाया। तो कितनी आ रही है जा रही है, तुम क्यों कहाँ जा रहे हैं, वही तो प्रश्न है।
मैंने उनको लक्ष्य प्रति हम जग नहीं है,
इमर्ज नहीं है, ज्ञान को इमर्ज करना है। अगर देखो, अगर मैं उस दिन कल बोला था ना, आप नहीं थे, अगर रवि भाई, अगर मैंने बोला कि ये मुरली जो है, कल की जो मुरली है, कल सुबह वाली, आज रात को सबको दे दी जाए, ठीक है, और कल शाम को उस मुरली पर टेस्ट होगा, टेस्ट के मार्क्स जो है ना वो डिस्प्ले होंगे पांडवन, ज्ञान सरोवर और रोजरी के सारे सेंटर्स में जाएंगे, पासिंग मार्क्स है 80%, और नाम के साथ में सामने आएगा पास फेल, पास फेल। फिर इज्जत का सवाल रहता है ना, कैसे पढ़ेंगे, फिर सुनेंगे ही नहीं पढ़ेंगे भाई, इज्जत का सवाल है।
यहाँ पेपर रखते थे ना, कैसे मुरली पढ़ना शुरू कर देते थे, जो भी एग्जाम देने जाते,
टेंशन चाहिए कोई भी चीज पढ़ने, बिना टेंशन के तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा टेंशन चाहिए, स्ट्रेस चाहिए कि पढ़ना है, नहीं तो क्या। वैसे जैसे अभी बोला ना, तो अभी जब ये पता चला कि एक शांतिवन में नोटिस लगेगा, सुशील भाई पास फेल, पासिंग मार्क 80%,
पता चलेगा
तो फिर होने के लगता है, मैं तो
पास होना ही ना, ऐसे लगे नहीं अंत में बोर्ड।
जैसे मैं बोला था, हमारे जो डॉक्टर थे ना, उनका जो भी टेस्ट हम लेते हैं ना, तो सबसे पहले एक बार टेस्ट लिया ना, तो दो लोग फेल हो गए, वो दोनों आ गए और रोना चालू कर दे, सर प्लीज इसको नोटिस बोर्ड पे मत लगाना, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे लगता है ना तो फिर सब देखते हैं ना, अरे फेल। मैंने सुना नहीं, लगाया सबका लगाया, फिर उसके बाद में सेकेंड टाइम जब टेस्ट दिया सब पास। पहली बार ऐसे ही कैजुअली ठीक है,
अगर नहीं लगाते ना तो अटेंशन नहीं रहती फिर,
लगनी चाहिए, इज्जत का सवाल रहता है ना, सिर्फ कॉलर नाक कट जाती ना। तो वो जैसे कोई स्टूडेंट रहा, एग्जाम रही 10वीं की 12वीं की, कैसे पढ़ते दिन रात, इसको हम वैसे कहाँ पढ़ते, कैजुअली लेते हैं, याद रखने के लक्ष्य से पढ़ते कहाँ, इसको नहीं पढ़ते, या धारण करने के लक्ष्य से नहीं, आइए देखा छोड़ दिया, जबकि बाबा ने बोला है मुरली मुरली मुरली, जिसको मुरली से कह रहे उसको बाबा से कह रहे, मुरलीधर से कह रहे, और बाबा को सबसे अच्छा बच्चा कौन है बाबा का, टेप रिकॉर्ड, क्योंकि ये मैं जैसा सुनाता हूँ वैसा सुनाता है। उस दिन बोला था ना, ये मैं जो रिपीट करता हूँ वैसे के वैसे ये रिपीट करता है, इसके लिए मेरा सबसे अच्छा बच्चा ये टेप रिकॉर्ड है, बाकी कोई नहीं है। तो उसको वो जिस रीति से, जिस भाव से वो बोल रहा है, उसको उसी रीति से समझना है, और समझने के लिए पहले पता तो, क्योंकि ये भाषा इतनी फिलोसॉफिकल है, हाई लेवल भाषा है ये, इसकी हिंदी भी इतनी कठिन, मतलब इतनी सिंपल नहीं है हिंदी, जो हिंदी भाषा वाला नहीं होगा ना वो उसको याद नहीं रख सकता है, हिंदी का भी थोड़ा अभ्यास चाहिए, शब्द भी चाहिए थोड़े से, तो हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य रचना कितनी कठिन है, एक वाक्य इतना मोटा मोटा है, ऊपर से चालू होता है आज कहाँ है गुम, नीचे आने तक वो कहाँ था, कहाँ से चालू, कहाँ से हुआ, बीच में क्या था पता ही नहीं,
वही ना, वही हम इतनी मूलियाँ सुनते कहाँ जाऊंगा,
तो बड़े बड़े पढ़े
लिखे, इसके लिए ना टारगेट रखना एक पैराग्राफ बस, एक पैराग्राफ को ही समझना, एक पैराग्राफ पढ़ा समझा और छोड़ो, याद करो क्या था, क्या था, कैसा था। कभी कभी मैं शाम का जो योग है ना उसको छोड़ के, मेरे को चिंतन ही ज्यादा अच्छा लगता है, कभी जरूरी नहीं कि योग में बैठे और योग हो गए, कभी कभी हमारा जो दिनचर्या है उसमें इतनी हलचल है कि योग नहीं होता है, तो वो टाइम पे चिंतन, गहराई से चिंतन है, सादा मतलब चिंतन करते करते योग, चिंतन भी कर रहे योग भी कर रहे, चिंतन भी कर रहे योग भी कर रहे, दोनों चीजें साथ साथ
चिंतन हो
जाता तब कहीं हम शक्तिशाली बनते नहीं तो कहाँ है। और वरदान, वरदान बचे चक्र के बारे में था ना, सदा सेवा और यादव सेवा में बिजी रहो तो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते, कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, सीधा होने वाले परवाने वही। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना, क्षमा पे क्षमा पर सीधा होने वाला क्षमा के समान बन जाते, क्षमा पर सीधा होने वाले क्षमा के समान बन जाते। और स्लोगन, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। ये हम जो पढ़ रहे थे उनको डेनिस बहन है ना, उनका उदाहरण आया, डेनिस बहन मैंने सुना है वो पहले बहुत चेंज मुकर थी, दादी जानकी यहाँ पे है सच्चा पारस, सच्चा पारस जो बने उनके संग से लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। दादी जानकी ने टच किया ना उसको, तो जो लोहा है वो मुझे डिटेल पता नहीं, पर किसने बताया,
दादी ने बताया कि वो मिलने जब फर्स्ट टाइम गए ना तो उन्होंने दादी ने मना कर दिया मिलने से, क्योंकि इसमें सिगरेट की बहुत स्मेल आ रही
थी,
तो दादी ने बोला मैं इस कारण से नहीं मिलूंगी। तो फिर उसने उसी समय संकल्प किया किस लिए नहीं मिलेंगी, बोले ऐसे से, तो बोले मैं अगर मैं अभी से छोड़ दूँ तो मिलेंगी, तब दादी ने सुनाया।
इस प्रकार से ऐसे ही ना, ये मतलब ये महादान वरदानी आत्मा है, हाई क्वालिटी,
ये है
वरदानी, इसके लिए तो मैंने थोड़ा कम कर दिया दानी और महादानी, बस वरदानी अभी टाइम है पर हो जाएगा।
आप ठीक बोला,
हो जाएगा। बाबा भी बोलता है ना हो जाएगा, व्यर्थ से मुक्त नहीं हुए,
बाबा के मगर निवासी बच्चे सब वरदानी
आत्मा, जब मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा तो मधुबन जादू की
नगरी बन जाएगा,
महल बन जाएगा, बाबा के महावाक से जब व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, एक एक मधुबन निवासी, एक एक मधुबन निवासी, निर्विघ्न सेंटर, निर्विघ्न सेंटर इंचार्ज, निर्विघ्न भवन इंचार्ज, निर्विघ्न निर्विघ्न बनो, निर्विघ्न बनाओ, लास्ट सीजन की सारी मुरलियां यही था ना, बार 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 हर इधर उधर से ज्ञान एक ही है, आत्मा समझ बाप को याद करो, बस इतना करने के लिए ये सारा विस्तार है, इतना सारा जो चल रहा है ना इतने सालों से, इतनी अव्यक्त वाणियां, साकार वाणियां, ये सब एक ही चीज को करने के लिए, आत्मा समझ के बाप को याद करो,
ये खाली ज्ञान की एक बूंद ही है।
उस दिन बाबा ने बोला ना, देह के सर्व संबंध भूल कर अपने आप को अकेला समझो, अभी ये साकार की एक मूर्ति आएगी, मुझे सबसे अच्छी पॉइंट लगी वो, अपने आप को अकेला समझो,
अकेला समझ, अकेले बाप को याद,
कोई कोई नहीं, एकला चलो रे,
अकेला चलो रे,
पाँच, हाँ पाँच के, हाँ वही वही उसी दिन 16-17 तारीख की शायद, अकेला एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है, ज्योतिपुर डाक्षी नाको रे एकला चलो, अकेले चलना, पैर में पूरे उसको गीतांजलि है ना किताब, उसको नोबेल प्राइज मिला है, पैर में पूरे रक्त रंजित हो गए, रक्त पूरा जमीन हो गई है, फिर भी एकला चलो, कोई तुम किसी को बुलाओ, कोई ना आए, एकला चलो, बहुत अच्छी कविता। 10 बजे ओम शांति।